को विशेषतया चिंतन और चरित्र के क्षेत्र में भावपरक उत्कृष्टता भरने वाले अध्यात्म प्रयास में निरत रहते देखा जाता था। वे ही देश की मान मर्यादा को उच्च शिखर पर बनाए रखने का श्रेय संपादित करते रहते थे। इन दिनों आदर्शवादी आकांक्षाओं में बुरी तरह गिरावट आई है। अपनी जीवनचर्या से दूसरों को कारगर प्रकाश दे सकने वाले प्राणवान ढूंढे नहीं मिलते। बकवादी तो पहले से भी अधिक बढ़ गए हैं, जो कथनी और करनी में भारी अंतर रहने के कारण गंदगी बिखेरते और अश्रद्धा का वातावरण बनाते देखे जाते हैं। तीसरा व्यवधान है अहंकार। समान स्तर के सज्जन व्यक्तियों को अपना आपा नम्रता से भरा पूरा रखना चाहिए और दूसरों के साथ व्यवहार वार्तालाप इस स्तर पर करना चाहिए जिसमें आदर सम्मान की भावना छलकती हो। अच्छे संबंध बनाए रखने का, अपनत्व बढ़ाने का अवसर इसके बिना मिलता ही नहीं। अहंकारियों का रवैया ठीक इसका उल्टा होता है। वे अपने बड़प्पन का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरों की कमियां बताकर अपने को उन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिससे भी संपर्क साधा गया है वह अपने को तिरस्कृत किया जा रहा अनुभव करता है और कहने वाले को अहंकार के दुर्गुण से घिरा हुआ मान लेता है। ऐसे लोग किसी का सच्चा स्नेह सम्मान भी नहीं पा सकते। अपना उल्लू सीधा करने वाले चापलूसों के अतिरिक्त और कोई न तो उनका मित्र होता है और न आड़े समय में काम आता है। देखा गया है कि अच्छी संस्थाओं में भी महत्वाकांक्षी बड़प्पन पाने के लिए लालायित लोग ही अनेकों विग्रह खड़े करते हैं एवं अंततः उस संगठन को ही बर्बाद कर देते हैं। युग साधना में सफलता हेतु लोभ, मोह और अहंकार को जितना अधिक घटाया जा सकेगा उतना ही स्तर इस योग्य बनता जाएगा कि लोग सच्चे मन से आदर भाव रखे और दिए गए परामर्श में अपना हित साधन समझे तथा स्वीकार करे। इन दिनों सेवा क्षेत्र में करने योग्य तो अनेकानेक क्रियाकलाप हैं। स्वास्थ्य शिक्षा संपन्नता के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। सुविधा संवर्धन के साधन जुटाना भी आवश्यक है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति उत्कृष्ट चिंतन का अभ्यासी बनने के साथ अपनी समस्याओं का अपने बलबूते स्वयमेव हल खोज सके, स्वावलंबी बन सके। स्थायित्व इसी में है, अन्यथा दूसरों के साधन अनुदानों का आसरा तकते तकते आंतरिक दृष्टि से भी दीनहीन बन बैठेगा और देवताओं से लेकर श्रीमंतों के सामने गिड़गिड़ाकर कुछ प्राप्त कर लेने की तरकीबें ढूंढता रहेगा। स्वाभिमान और स्वावलंबन की दृष्टि से यह अनुपयुक्त ही है। गुण कर्म स्वभाव उत्कृष्टता ही वास्तविक सशक्तता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रामाणिक विश्वस्त एवं कर्तव्यप्रायण समझा जाता है। वह वातावरण सहज ही बनता दिख पड़ता है। 21वीं सदी के अवतरण में भागीरथ जैसे तपस्वी व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऐसे तपस्वी जो मानवीय सद्गुणों का अभ्यास करने के उपरांत देवोपम विशेषता के क्षेत्र में प्रवेश पा चुके हों। जो दूसरों के अवगुणों पर जीत पा लेता है वह वीर कहलाता है, पर इससे भी अगली श्रेणी का महावीर वह है जिसने अपने आप को जीत लिया। ऐसे महामानव ही हनुमान स्तर के रीति नीति अपनाते और आदर्शों के समुच्चय भगवान के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित रहकर जन जन की श्रद्धा के भाजन बनते हैं। दैवी अनुग्रह तो उन पर अजस्र रूप से बरसता ही है। यह धारणा ठीक है कि अपना पुरुषार्थ भी कम न था, पर उसे सफल बनाने के लिए अदृश्य लोक से जितने अनुदान बरसे उनका महत्व भी कम करके नहीं आंका जा सकता। खरे सोने की ही पूरी कीमत उठती है, भले ही उसे स्वर्ण विक्रेता की दुकान पर क्यों न ले जाया जाए। खोटे सिक्के हर जगह दुत्कारे जाते हैं, उनकी असलियत तो अंध भिखारी भी अनुमान लगाने भर से जान लेता है। बड़े कामों के लिए बड़ी हस्तियां ही अभीष्ट होती हैं। 21वीं सदी के साथ एक से एक बढ़कर वजनदार और महत्वपूर्ण कार्य जुड़े हुए हैं। उन्हें संपन्न करने के लिए मनोबल के धनी और चरित्र बल में मूर्धन्य स्तर के व्यक्ति ही चाहिए। तलाश उन्हीं की हो रही है। प्रतिभा परिष्कार का अभियान इसी दृष्टि से चलाया जा रहा है। उस परिष्कार से तपकर निकले हुए व्यक्ति न केवल अपने में अग्रगामी वरिष्ठजनों में गिने जाने योग्य बनेंगे, वरन दूसरों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने में भी अपनी विशिष्टता का परिचय दे सकेंगे। समय का एक बड़ा अंश नवसृजन में लगे। अति महत्वपूर्ण सामर्थ्यों की इस दुनिया में कमी नहीं, पर विधि की कुछ ऐसी विडंबना है कि वे प्रायः प्रसुप्त स्थिति में उनींदी पड़ी रहती हैं। प्राणी समुदाय का निर्वाह क्रम किसी प्रकार चलता रहे, क्षमताओं का उतना ही पक्ष क्रियाशील रहता है। यदि विशेष उद्देश्य को क्रियान्वित करना हो तो उसके लिए विशिष्टजनों को विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। समुद्र में विपुल संपदा अनादि काल से छिपी पड़ी थी, उसका किसी को पता तक न था, पर जब प्रजापति के परामर्श से देव दानवों ने मिलजुल कर प्रयत्न पुरुषार्थ किया तो वे 14 रत्न निकले, जिनके कारण धरती से लेकर स्वर्गलोक तक में चमत्कारी संपदाओं का बाहुल्य उभर पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। दार्शनिकों ने उसकी विचित्र स्थिति को देखते हुए कहा है कि वह भटका हुआ देवता है। यदि उसे सही राह पर चलाने के लिए कोई कुशल महावत मिल जाए तो वह अपनी असाधारण ऊंचाई और समर्थता से हर किसी को चमत्कृत कर सकता है। अवांछनीयता की जकड़न और प्रगति की तड़पन अनुभव तो सभी करते हैं, पर गाड़ी यहीं अट जाती है कि दैवी गरिमा की प्रतीक प्रतिनिधि मानवीय क्षमता को जगाने के लिए तैयारियां कहीं होती नहीं दिखती। यदि नारद जैसे कुछ ही लोग जागृति गान गाने में निरत रहे होते तो मानवीय पराक्रम और दैवी अनुग्रह का सुयोग सहज ही बन जाता और परिवर्तन भरा ऐसा वातावरण उद्भूत होता जिसे युग परिवर्तन जैसा कायाकल्प कहा जाता। दूध गर्म किए जाने पर मलाई तैरकर ऊपर आ जाती है। महाकाल की हुंकार सुन सकने में जिनके कान समर्थ हैं, वे इन दिनों कुछ करने के बिना रह ही नहीं सकते। बिगुल बजते ही सैनिक तंबू को छोड़कर मैदान में पंक्तिबद्ध आ खड़े होते हैं। आदेश जब तक मिले उसके पहले ही वे वर्दी पहनने और पेटी कसने का काम पूरा कर लेते हैं। आज का युग धर्म है जन जागरण के लिए प्रचंड पुरुषार्थ में जुट पड़ना। यही होने भी जा रहा है। प्रतिभाएं अग्रिम मोर्चे पर एकत्रित हो रही है और व्यापक जन जागरण की क्रमबद्ध सुव्यवस्थित योजना बना रही है। चिंतन आगे भी इसी विकृत स्थिति में नहीं रहेगा, उसे अपनी उल्टी दिशा छोड़कर उस दिशाधारा को अपनाना पड़ेगा जो सही एवं श्रेयस्कर है। विचार परिवर्तन यदि ब्रेन वॉशिंग स्तर का करना हो और उसकी परिधि संसार भर में बसने वाले लगभग 600 करोड़ व्यक्तियों तक सुविस्तृत करनी हो तो उसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे और उस कार्य में रीछ वानरों की तरह हर छोटे बड़े का अपने अपने ढंग का योगदान होगा। विचार परिष्कार के लिए लेखनी और वाणी के दृश्य और श्रव्य स्तर के सभी माध्यमों का उपयोग होगा। इस संदर्भ में युग साहित्य से जन जन को अवगत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। कार्ल मार्क्स, रूसो, हैरियट स्टो जैसों की क्रांतिकारी लेखनी का चमत्कार और परिणाम अनेकों ने पिछले दिनों प्रत्यक्ष देखा ही है। युग साहित्य को झोला पुस्तकालयों और ज्ञान रथों के माध्यम से घर बैठे बिना शुल्क हर शिक्षित तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही यह अनुबंध भी जोड़कर रखा गया है कि बिना पढ़ों को उसे सुनाते रहा जाए। यह कार्य प्रधान रूप में अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में संपन्न हुआ है। अगले ही दिनों उसे देश की विश्व की समस्त भाषाओं में समुद्री ज्वार भाटे की तरह फैलते और कोहराम मचाते देखा जाएगा। श्रव्य प्रयोजनों के लिए बिना खर्च वाले दीप यज्ञों की इतनी विशाल योजना चल पड़ी है कि गांव-गांव इस माध्यम से युग चेतना का आलोक वितरण का सिलसिला द्रुतागति से चलता रहेगा। विचारशील वर्ग की अतिरिक्त गोष्ठियों का क्रम भी चल पड़ा है जिसके आधार पर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन में उतारकर दिखाने के लिए हर जागृत आत्मा के प्राण हुलसने लगे। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उद्बोधनों और संगीतों को घर घर पहुंचाने की योजना बन रही है। अभिनय भरे संगीत के आयोजन का सरल माध्यम नए रूप में अपनाया गया है। बन पड़ा तो इसके लिए वीडियो आदि का प्रभावशाली उपक्रम भी अपनाया जाएगा। सूर्य पूर्व से उदय होता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने भी समय समय पर विश्व का प्रगतिशील मार्गदर्शन किया है। इस बार भी बारी उसी की है। न केवल भारतवासी नवयुग की विचारधारा से अनुप्राणित होंगे वरन भाषा समस्या के अनुरूप यदि प्रबंध बन पड़ा तो संसार भर की प्रतिभाओं को आगे आना होगा एवं सर्वतोमुखी परिवर्तन के लिए अपने अपने ढंग से अपना अपना योगदान प्रस्तुत करते देखा जा सकेगा। प्रचार प्रक्रिया के साथ लोक सेवा का गहरा पुट लगा होना आवश्यक है। ईसाई मिशन इसी रीति नीति को अपनाकर प्रायः एक सहस्राब्दी में कम से कम आधी दुनिया को अपना मतावलंबी बना चुके हैं। युग निर्माण की जन जागरण योजना के दो विधेयात्मक और दो निषेधात्मक कार्यक्रम प्राथमिकता के स्तर पर हाथ में लिए गए हैं, जिनमें से एक है हर शिक्षक द्वारा न्यूनतम 2 अशिक्षितों को शिक्षित बनाया जाए। इससे कम में देश की निरक्षरता का समाधान हो नहीं सकेगा। इसी उपक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय योजना भी जुड़ी हुई है ताकि हर प्रकार की वर्तमान समस्याओं का स्वरूप और समाधान जानने का अवसर मिल सके। विद्यालय और पुस्तकालय मिलकर ही एक समग्र शिक्षण प्रक्रिया विनिर्मित होती है। दूसरा है नारी जागरण। यह आधी जनता को अवगति के गर्त में से निकालकर समर्थता के सिंहासन पर बिठाने जैसे क्रांतिकारी कदम है। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। उसकी भूमिका हर क्षेत्र में नर से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर होगी। अतः प्रयत्न यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और तेजस्विता की दृष्टि से उपयुक्त स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उसे 2 सुविधाएं देनी होंगी। एक, गृह कार्यों में 24 घंटे व्यस्त रहने के बंधनों से थोड़ा अवकाश देना जिससे वह प्रगति के हेतु कुछ कर सकने की सुविधा प्राप्त कर सके। दूसरा यह कि उस पर प्रजनन का भार कम से कम दिया जाए। इससे जहां जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगेगा वहां वे महिलाएं अधिक योग्यता संपादन का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगी। यही दोनों कार्य विधेयात्मक योजनाओं में से अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप हाथ में लेने चाहिए और इन उपायों के लिए भी युग चेतना विस्तार की तरह ही रुचिपूर्वक समयदान देना चाहिए। जिस प्रकार सृजनात्मक पुण्य प्रयोजन अनेकों हैं उसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में असंख्य कार्य करने को पड़े हैं। इनमें से परिजन 2 को प्रमुखता दें, एक नशा निवारण, दूसरा विवाहों में होने वाला अपव्यय। समाज को दिन दिन दुर्बल दरिद्र बनाने वाले यही 2 प्रमुख कारण हैं। नशा न पीने, न पीने देने के लिए प्रतिज्ञा की जाए, उसकी हानियों से जन जन को अवगत कराया जाए और छुड़ाने के लिए जो भी उपाय अपनाया जा सकता है उसे कार्यान्वित किया जाए। ठीक इसी प्रकार यह तथ्य भी हर किसी को समझाया जाए कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। दहेज, जेवर, धूमधाम और अनावश्यक बारात का प्रचलन रुके तो ही समझना चाहिए कि मानवीय आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंग विवाह संहिता का आधार बन पड़ा। गांधी जी ने खादी आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दो उपक्रम हाथ से लेकर अपना महान सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया, जो अंततः अनेक धाराओं में विकसित हुआ और राष्ट्र को मानव जीवन प्रदान कराने में समर्थ हुआ। युग निर्माण योजना ने प्रचार प्रक्रिया के अतिरिक्त निरक्षरता उन्मूलन और शादियों को बिना खर्च की बनाने का कार्य हाथ में लिया है। ऐसी शादियां शांतिकुंज में आकर लोग हजारों की संख्या में करा चुके हैं। ऊपर कुछ थोड़े से कार्यक्रमों का उल्लेख है। इसे शुभारंभ की बेला में जुटाया गया थोड़ा सरंजाम ही समझा जा सकता है। अगले दिनों तो सर्वतोमुखी सृजन परिवर्तन के लिए अनेकों काम हाथ में लेने होंगे और ध्यान रखना होगा कि गिराने में जितनी शक्ति लगी है उसकी तुलना में बनाने में कहीं अधिक कौशल, समय, श्रम और साधन चाहिए। यह साधन कहीं आसमान से नहीं टूटेंगे। युग चेतना से अनुप्राणित प्रतिभाओं को अपने आप से इस समयदान का शुभारंभ करना होगा, जिसके सहारे जहां भी आवश्यकता हो वहां उसका उपयोग हो सके। महाकाल ने समयदान की एकमात्र याचना की है और हर प्रतिभावान से आशा की है कि वह साढ़े समय में इस हेतु कृपणता न बरतेगा, वरन ऐसी उदारता का परिचय देगा जिसे अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहा जा सके। विश्वास किया जाना चाहिए कि इस मिशन का हर घटक इस संदर्भ में साहसिकता अपनाएगा और अगले कदम क्या उठे इसके लिए शांतिकुंज के साथ विचार विनिमय या पत्राचार आरंभ करेगा। प्राणवान प्रतिभाएं यह करेंगी। 21वीं सदी में परिष्कृत प्रतिभाओं की बड़ी चढ़ी भूमिका होगी। उसी को दूसरे शब्दों में ईश्वर इच्छा, दैवी प्रेरणा या समर्थ चेतना द्वारा संपन्न की या कराई गई तपश्चर्या कह सकते हैं। इस आधार पर महाकाल ने इन दिनों परिष्कृत प्रतिभाओं का उत्पादन अभिवर्धन करने का निश्चय किया है, साथ ही उनको समर्थ, सशक्त और आदर्शों के लिए बढ़ चढ़कर साहस प्रदर्शित कर सकने की क्षमता संपन्न बनाने का भी निर्णय लिया है। अगले दिनों वर्तमान चिंतन को नई दिशाधारा देनी होगी, ताकि उसे विवेक की कसौटी पर कसने के बाद जो उचित हो उसी को अंगीकार करने का साहस उभरे, साथ ही ऐसा पराक्रम भी जगे जो अनौचित्य से जूझने को न सही, कम से कम अस्वीकार करने के लिए तो कटिबद्ध हो सके। इस प्रयोजन के लिए अनेक प्रचलनों और मान्यताओं का परिशोधन करने के लिए प्रचार माध्यमों में युग चेतना का समावेश करने के निमित्त बड़े प्रयास करने होंगे। इसका प्रथम प्रयास तो युग साहित्य का सृजन ही है, पर वह बीज बोने जैसा श्री गणेश भर है। वस्तुतः उसका विकसित रूप तभी बन सकेगा जब हर भाषा में उसके प्रकाशन की ही नहीं विक्रय की भी व्यापक व्यवस्था बन पड़े। सृजन के साथ ही उसके परिवर्धन और प्रचलन की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उगे अंकुर सूख कर रह जाते हैं। विचार क्रांति के लिए साहित्य सृजन एक कार्य है, पर उतने भर से प्रयोजन की पूर्णता कहाँ बनती है। 3/4 अशिक्षित जनता के लिए विचार परिवर्तन का आधार तभी बन पड़ेगा जब दृश्य और श्रव्य के सशक्त आधार विनिर्मित और प्रचलित किए जाएं। इसके लिए यांत्रिक माध्यम भी अपनाने पड़ेंगे। लेखनी अब पर्याप्त नहीं रही, उसके लिए प्रेस माध्यम का अपनाया जाना अनिवार्य हो गया है। यह विज्ञान युग जो है पत्रिका, पुस्तकें, प्रचार पत्र, स्टीकर, पोस्टर जैसे अनेक आधार अब अपेक्षित है। प्रकाश चित्रों, स्लाइड प्रोजेक्टरों का प्रदर्शन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक भाग बन गया है। चित्र विभाग में ही फिल्में भी आती हैं। कभी कथा, प्रवचन व संकीर्तन आदि की सत्संग प्रक्रिया ही वाणी के माध्यम से सद्विचार संवर्धन का काम पूरा कर लिया करती थी, पर अब तो अलख जगाने, प्रभात फेरियां निकालने जैसे वे उपचार काम में लेने होंगे जिनके लिए लोगों के एकत्रित होने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। जन जन से संपर्क साधना और घर घर अलग जगाने का प्रयोजन जिस प्रकार भी पूरा हो सके उन उपकरणों को काम में लिया जाए। संगीत और अभिनय का अपना महत्व है, उन्हें किस प्रकार व्यापक प्रचार का सर्वसुद्ध साधन बनाया जा सकता है इसके लिए भी गंभीरता पूर्वक विचार करना और मार्ग ढूंढना होगा। इस प्रयास को इतना व्यापक बनाना होगा कि सभी भाषा भाषी इस प्रकाश प्रसारण का लाभ बिना किसी अवरोध के प्राप्त कर सकें। प्रचार की परिधि में आवश्यक है और प्रथम चरण की पूर्ति करने में समर्थ भी है, पर उतने को ही पर्याप्त नहीं मान लेना चाहिए। दूसरा चरण है प्रशिक्षण। वर्तमान मान्यताओं प्रचलनों में से अधिकांश को बदलना होगा। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जनरुचि जिस रूप में इन दिनों विद्यमान है उसे भट्टी में गलाना और नए ढांचे में ढाला जाना है। यह बड़ा काम इसलिए है कि प्रस्तुत मान्यताएं, आदतें और परंपराएं इतनी आसानी से इतना बड़ा परिवर्तन अंगीकार करने के लिए सहज सहमत नहीं हो सकती। इस समूची प्रक्रिया को ब्रेनवाशिंग भरना कहकर कायाकल्प स्तर पर निरूपित करना होगा। यह कार्य ऐसी शिक्षण परिपाटी ही कर सकती है जिससे बौद्धिकता को समझाने और नए प्रयोगों के अनुरूप मानस बनाने की ही नहीं व्यवहार में उलट पुलट कर सकने तक की समर्थता विद्यमान हो। व्यवस्था और मान्यता के क्षेत्र में एकता समता यथार्थवादी एकरूपता लाने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता है वह शिक्षितों और अशिक्षितों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इसे संप्रदायों भाषाओं आदतों और रीति रिवाजों के वर्तमान ढांचे से ऊपर उठकर उस मार्ग को अपनाना होगा जो नए युग के नए मनुष्य की जिज्ञासा और आवश्यकता की भली भांति पूर्ति कर सके। शिक्षा का ढर्रा भी बदलना होगा। नई शिक्षा प्रणाली के लिए अवकाश के घंटे भी सीमित करने होंगे और उस उपक्रम को इतने लंबे समय तक चलाना होगा जब तक कि मूल मान्यताओं से पूरी तरह पीछा न छूट जाए और मानवीय चलन अपनी गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने का आदि न हो जाए। जीवन अनेकों क्षेत्रों में बंटा हुआ है। शरीर मन व्यवहार प्रचलन उपार्जन उपयोग आदि अनेक उसके पक्ष हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। भावी शिक्षा पद्धति इसी आधार पर जन सहयोग से विनिर्मित करनी होगी। सरकारी शिक्षा अपने धर्रे के अनुरूप रहे तो इससे कुछ बात बिगड़ती नहीं है। युग सृजन के लिए प्रत्येक भावनाशील से समयदान और अंशदान की अपेक्षा की गई है। आमतौर से हर आदमी के 4 घंटे सुरक्षित रहते हैं। इसमें से कोई भी युग धर्म के प्रति निष्ठावान 2 घंटे तो लगा ही सकता है। विशिष्ट व्यक्तियों से आशा की गई है कि निर्वाह के लिए उपलब्ध साधनों के सहारे अथवा जनता से ब्राह्मणोचित आजीविका जुटाकर इसी एक कार्य के लिए अपने को समर्पित करें। परिवार विस्तार और उसके लिए प्रचुर संपदा संजोने की ललक घटाई या मिटाई जा सके तो लोकसेवी की समूची क्षमता उस प्रयोजन के लिए समर्पित हो सकती है जिसकी महाकाल ने जीवंतों प्राणवानों और युग सृजेताओं से आशा अपेक्षा की है। वानप्रस्थ परंपरा पुनर्जीवित हो सके तो सतयुग की वापसी के लिए समर्थ अनुभवी प्रतिभाएं कार्य क्षेत्र में उतरती और अति महत्वपूर्ण मोर्चा संभालती देखी जा सकती हैं। उपरोक्त ही प्रयास समय साध्य नहीं साधन साध्य भी हैं। इसके लिए आरंभिक दिनों में 10 पैसा नित्य निकालने में ज्ञानघट योजना से भी श्री गणेश कराया गया था। अब कार्य विस्तार के साथ साथ अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके लिए अग्रगामियों से आशा की गई है कि वे महीने में 29 दिन की कमाई से गुजारा करें और 1-1 दिन की आजीविका नियमित रूप से निकालते रहें जिससे नवनिर्माण की गगनचुंबी योजनाओं में उचित सीमा तक योगदान मिल सके एवं उनका विस्तार हो सके। जिन्होंने अधिक संचय कर रखा है वे उसे प्रायश्चित स्वरूप विसर्जित कर दें तो ही ठीक है। प्राचीन काल में वरिष्ठ जन अपनी संचित संपदा को ऐसे ही पुण्य प्रयोजनों के लिए सर्वमेध यज्ञ के रूप में युग समस्याओं के समाधान में नियोजित कर देते थे। भामाशाह अशोक हर्षवर्धन वाजश्रवा आदि के असंख्यों उदाहरण ऐसे हैं। इसी पुण्य परंपरा में स्वेच्छापूर्वक समर्पित यह अनुदान दाता के निज के लिए और समूची विश्व मानवता के लिए श्रेयस्कर ही होगा। प्रस्तुत समयदान या अंशदान उस लोक शिक्षण में ही नियोजित होना चाहिए जिस पर नवयुग का अवतरण अवलंबित है। यह 2 ब्रह्मकर्म है और इन्हीं की अनुकंपा से कभी सतयुग की कालावधि में सर्वत्र आनंद मंगल बिखर रहा था। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हेतु इन्हीं 2 चरणों को उठाते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अभी तक गंतव्य का दिशा निर्धारण मात्र ही हो सका है। करने को तो इतना पड़ा है हर स्थिति का व्यक्ति अपने अनुरूप नवसृजन के लिए सरलतापूर्वक काम पा सके। इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन वह दिव्य सत्ता देती रह सकती है जिसने की इतनी बड़ी महाक्रांति की योजना बनाई और उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने की पुरानी प्रतिज्ञा नए सिरे से दोहराए है। इस संदर्भ में शांतिकुंज में ऐसे साधना प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे हैं जिनमें युग शक्ति के भागीदार बनते हुए सुनिश्चित दिशा में कुछ कर सकने का क्रम अपनाया जा सके उसके लिए उपयुक्त प्रेरणा एवं शक्ति संग्रहित की जा सके। यह सत्र 9 दिन के जीवन साधना सत्रों से रूप में लगातार वर्ष भर होते रहते हैं। प्रतिमाह ताप 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 इनकी तिथियां निर्धारित हैं। इन सत्रों में आत्मबल संवर्धन के लिए सर्व सुलभ किंतु विशेष प्रभावशाली आध्यात्मिक साधनाएं कराई जाती हैं। इनमें सामान्य मार्गदर्शन के साथ साथ व्यक्ति की भावना क्षमता योग्यता परिस्थितियों आदि के अनुरूप सुझाव परामर्श देने की भी व्यवस्था रहती है। हर स्थिति हर क्षमता तथा हर स्तर का व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त धारा चुन सकता है। जिनके पास समय अधिक है लोक सेवा के लिए कुछ अधिक करना एवं उसके लिए योग्यता बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए 1-1 माह के सत्र प्रति माह 1 से 29 तक चलते रहते हैं। किसी भी सत्र में प्रवेश के लिए अपना पूरा नाम पता परिचय तथा अनुकूल समय की जानकारी के साथ आवेदन भेजने पर स्वीकृति दी जाती है। अग्रदूत बने अवसर न चुकें। युग परिवर्तन में प्रतिभावान मनुष्यों का पराक्रम तो प्रमुख होगा ही साथ ही दैवी सत्ता का सहयोग भी कम न रहेगा। प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलने के लिए सृष्टा की अदृश्य भूमिका भी अपना कार्य असाधारण रूप से संपन्न करेगी। युग परिवर्तन के इस पराक्रम में दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन ये दो ही प्रधान कार्य हैं, पर उनकी शाखा प्रशाखाएं क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप इतनी अधिक बन जाती हैं कि उन्हें अगणित संख्या में देखा जा सकता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उलट पुलट एक बड़ा काम है, जिसका समस्त संसार में विस्तार करने के लिए अगणित सृजन शिल्पी चाहिए। युग संधि के इन 12 वर्षों में अपना परिवार कितना कुछ कर सकेगा, इसकी एक मोटी रूपरेखा बनाई गई है और उसे कार्यान्वित करने की तत्परता चल पड़ी है। 100,000 सृजन शिल्पी बनाए जा रहे हैं, हर परिवार पीछे एक सिख, एक सैनिक, एक साधु निकाले जाने की परंपरा अपने समाज के कई वर्गों में चलती रही है। इस उत्साह को पुनर्जीवित किया जा रहा है और ढेरों व्यक्ति शांति कुंज में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। उनका परिवार कोई कुटीर उद्योग अपनाकर निर्वाह चला लिया करे और परिवार की ओर से समाज को अर्पित किया व्यक्ति निश्चिंतापूर्वक सेवा कार्य में लगा रहे, तो उसके लिए वेतन व्यवस्था की चिंता न करनी पड़ेगी। मात्र 10-20 पैसा और 1-2 घंटा समय नित्य अंशदान के रूप में निकालने की परंपरा भी आवश्यक कार्यों की पूर्ति कर दिया करेगी। प्रतिभाओं को परिष्कृत करने, सूक्ष्म वातावरण को अनुकूल बनाने और सृजनात्मक प्रवृत्तियों के प्रचंड गति देने के लिए युग संधि पर्व पर एक सुनियोजित धर्म यज्ञ शांतिकुंज हरिद्वार में आरंभ किया गया है। यह निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से चलेगा एवं उसकी पूर्णाहुति 21वीं सदी के आरंभ में 1 करोड़ साधकों द्वारा संपन्न होगी। तब तक इतने भागीदार विनिर्मित हो चुके होंगे। वे जब एकत्रित होंगे और या वेदी पर भावी क्रियाकलापों का संकल्प लेकर लौटेंगे, तो विश्वास किया जा सकता है कि अपने परिवार का वह पुरुषार्थ भी स्वर्ग से धरती पर गंगा को उतार लाने वाले भागीरथी प्रयास की समानता करेगा। शेष काम अन्य लोगों का है। युग निर्माण परिवार से बाहर भी तो असंख्य भावनाशील प्रतिभाएं हैं, वे भी चुप क्यों बैठेगी। उनका प्रयास युग निर्माण परिवार से कम नहीं अधिक ही होगा और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया पूरी होकर ही रहेगी। सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में सहस्रकुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था, उसमें उपस्थित लाखों साधकों को उनके हिस्से का काम बांट दिया गया था। उसी धक्के का परिणाम है कि इतनी दूरी तक गाड़ी लुढ़कती चली गई है और इस बीच इतना कार्य बन पड़ा है जिसका लेखा जोखा लेने वाले आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं, प्रयासों को अनुपम बताते हैं। अब हमारे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ युग संधि महापुरुष चरण की पूर्णाहुति के रूप में चलेगा। 1 करोड़ साधक भागीदार अपने जिम्मे अगले दिनों करने के लिए जितना दायित्व स्वीकार कर रहे हैं, उसे देखते हुए हिसाब लगाया जा सकता है कि वे सन 58 के समय लिए गए संकल्प की तुलना में वे 25 गुने अधिक होंगे। अर्थात नए 25 युग निर्माण स्तर के प्रयास नए सिरे से चल पड़ेंगे और अधिकांश जन समुदाय को नवचेतना से आंदोलित करेंगे। यह कहा जाता है कि अगले 12 वर्षों तक वर्तमान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए हम जीवित न रहेंगे, तब इतनी बड़ी योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा। इस संदर्भ में हर प्रश्नकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बन पड़े परमार्थों में 99% दैवी चेतना सहयोग करती रही है। इस शरीर से तो 1% जितना कुछ बन पड़ा है। अगले दिनों प्रेरक सत्ता अपना काम करेगी और जो हम जीवित रहकर कर सकते थे उससे सैकड़ों गुनी सुव्यवस्था अपने बलबूते चला लेगी। चिंता या असफलता का अवसर किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले दिन अति महत्वपूर्ण है, उनमें हमारे कंधों पर आया भार भी अधिक बड़ा है। उसे इस वयोवृद्ध स्थूल शरीर से कर सकना संभव न होगा। हाड़ मांस की काया की कार्य क्षमता सीमित ही रहती है। सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना काम अधिक हो सकता है। जूझने और सृजन के दोहरे मोर्चे पर जितना करना कराना पड़ेगा, उसके लिए सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना गुजारा नहीं। जिम्मेदारी बहुत अधिक बड़ी है, इसलिए काया स्वस्थ होते हुए भी उसे छोड़कर शांतिकुंज काया का आश्रय अनिवार्य हो जाता है। समझा जाना चाहिए कि व्यापक क्रियाकलापों का निर्वाह करते हुए भी हम शांतिकुंज और उनके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने में तनिक भी प्रमाद नहीं बरतेंगे। सब कार्य यथावत ही नहीं वरन और भी अच्छी तरह संपन्न होते रहेंगे। 1 करोड़ साधकों वाली पूर्णाहुति भी पूरी होकर रहेगी और उसके आवश्यक साधन भी जुट जाएंगे। हमें अपने हिस्से के कार्यों की चिंता है, परिजन अपनी जिम्मेदारी की चिंता करें तो इतना ही बहुत है। वर्तमान परिजनों में प्रत्येक से कहा गया है कि वे इन दिनों जितनी सेवा साधना और ध्यान धारणा बढ़ा सके बढ़ा लें। साथ ही 1 से 5, 5 से 25 वाले उपक्रम का भी ध्यान रखें। अभी तो सभी परिजन निजी जिम्मेदारी उठाने वाले भागीदार मात्र हैं। अगले दिनों उन्हें अपने प्रेमी साथी और बनाने हैं, तभी पूर्णाहुति के वर्ष तक 25 हो सकेंगे। जिनके तत्वावधान में 25 भागीदार होंगे उन्हें संरक्षक गिना जाएगा और उनका स्थान अधिक प्रमाणित माना जाएगा। 25 न भी बना सके तो भी कम से कम 5 भागीदार तो हर किसी को बना ही लेने चाहिए, ताकि 1 करोड़ संख्या पूरी होने में कमी न पड़ने पाए। उद्यान लगाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाती रहती है। समझा जाना चाहिए कि युग संधि पुरश्चरण को खाद पानी देने वाले किए गए प्रयास की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। उतनी ही नहीं, उनके पुण्य से उनकी अगली पीढ़ियां भी मोद मनाती रहेंगी। इस अलभ्य अवसर से जो चूकेंगे उन्हें यही पश्चाताप ही कचोटता रहेगा कि एक ऐतिहासिक सुयोग का अवसर आया था और हमने उसकी अपेक्षा कर उसे आलस्य प्रमाद में गंवा दिया। आशा की गई है कि वर्तमान परिजनों में से कदाचित ही कोई ऐसे रहें जिनसे युग धर्म का वर्तमान निर्वाह न बन पड़े, जो समय अदान अंशदान से जी चुराएं। प्रस्तुत पुरश्चरण मात्र भारत तक सीमित नहीं है, इसमें अन्य देशों और धर्मों के लोग भी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित हो सकते हैं। साधक अपना पंजीकरण एक परिपत्र पर अपना नाम, पता, साथी भागीदारी की संख्या व उनके नाम पते लिखकर भेज दें। यहां से उनकी पंजीयन क्रमांक सूचित कर दी जाएगी, उसी आधार पर भावी पत्र व्यवहार चलेगा। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक Asterisk 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूजीरो गुरुदेव के जीवन का सार हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा हैं। 1940 से अब तक के साहित्य का सार हैं। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहें या कागज कलम चुक जाएं, तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें, लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचे कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है। आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृतियों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। पम 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावनापूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।